और यहां से क्या लेके गए थे वो? यहां से वो भागवतम पुराण लेके गए थे और ये भगवान कृष्ण का नाम, और कुछ नहीं लेके गए थे वो। उनके पास कुछ धन नहीं था उस समय, सिर्फ जो अलाउड था $7 अलाउड थे। कोई भी भारतीय अमेरिका जाएगा तो $7 लेके जा सकता है। $7 लेके एक भागवतम पुराण किताबों का बॉक्स लेके, और ये हरि नाम, भगवान का नाम, हरे कृष्ण नाम। वहां पे एक पार्क है जिसे कहते हैं टॉमकिन स्क्वेयर पार्क। उस पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठ के, इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं था कोई, और ये मृदंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का एक कीर्तन शुरू किया। वहीं से लोग जो है ये अट्रैक्ट होने शुरू हुए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसमें 16 शब्द है, 3 मूल शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम, इनको मिला के जब पूरा मंत्र बनता है तो 16 शब्द हो जाते हैं। तो ये कलई संतरण उपनिषद में आया है। कलई संतरण उपनिषद है जो बताया है कि कैसे हम कलयुग से पार पा सकते हैं। ये तो आप मानते हो ना कि कलयुग है, क्या नहीं? कलयुग है ना, कैसे कलयुग है? कलयुग के क्या क्या लक्षण है? कलह होता है, बिल्कुल। प्रभुपाद जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, कलयुग मीन्स एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। ये ऐसा समय है जहां पे झगड़ा होगा, छोटी छोटी बातों पे हमेशा झगड़ा होता रहेगा। तो हिपोक्रेसी, लोग जो हैं बनावटी होंगे, अंदर कुछ बाहर कुछ, हिपोक्रेट होंगे। तो एक अलग हो गया, देखते हैं बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका प्रभाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है सारी दुनिया में। और अगर आप भागवतम पुराण देखो तो भागवतम पुराण के 12वें स्कंध में जो लक्षण दिए हुए हैं वो आप देखोगे कि अभी आप उनको देख सकते हो अपनी आंखों से। उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि ऐसे होगा, और आप देख लो कि अभी ऐसा है। तो कलई संतरण उपनिषद में बताया है, ये मंत्र लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशिकम नाम नाम कलो कलमश नाशनम न परो तरो उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। इसका मतलब है कि ये जो 16 शब्दों के नाम है, इति षोडशिकम, षोडशिकम मतलब 16, कलो कलमश नाशनम, कलयुग के जो कलमश है, कलयुग की जो दिक्कतें हैं, कलयुग में जो मुसीबतें हैं, उनका नाश करने वाला है। कलो कलमश नाशनम न परो तरो उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, सारे वेदों में हमने दृश्यते मतलब जांच पड़ताल कर लिया, सारे वेदों के पन्ने पलट लिए हैं, उसके बाद ये बात हम ये कलई संतरण उपनिषद में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखा नहीं है, सारी जांच पड़ताल नहीं की। तो ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलयुग की अचूक दवा है। और जैसे ही हम इसको बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमें फायदा होता है वो ये फायदा होता है कि हमारा माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है, मन, क्योंकि मंत्र का मतलब यही है। मंत्र कैसे बनता है? मन और योग करो त्र, मतलब मन को जो त्राए, मन को जो डिलीवर करे, मन को जो इस संसार के चक्कर से निकाले। मन अभी फंसा हुआ है इस संसार में, फंसा हुआ है ना, मन में कई तरह की इच्छाएं, कई तरह की बातें उठती हैं, और मन इतना हावी है कि जैसे ही मन में बात उठती है हम उसी वक्त उसको पूरा करना चाहते हैं। मन कहता है पूरा करो, है ना, किसी लिए तो सारा लोगों का बिजनेस चल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस क्यों चल रहा है, क्योंकि लोगों को मन पे वश नहीं है, उनका मन किया ये चीज लेनी है, पैसे नहीं है नो प्रॉब्लम, हम क्रेडिट कार्ड देते हैं, लोग क्रेडिट पैसे दे देना बाद में ले लो, पहले चीज ले लो, है ना। वो एक इंग्लिश में कहते हैं द टुडे जो बताते हैं कि किसको कहते हैं सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल मैन इज वन हु इज ड्राइविंग ए कार ऑन लोन, कार ऑन लोन एंड ही हैज पुट पेट्रोल बाय क्रेडिट कार्ड, उसका कुछ नहीं है, कार भी अपनी नहीं है देखा जाए तो, और पेट्रोल डालने के पैसे भी नहीं होते, लेकिन वो ड्राइव कर रहा है ना। तो ये आजकल का उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि लोगों का अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है। और शास्त्रों में कहा है मन जीता जग जीता, जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जग को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया। तो ये है मंत्र जिससे आप जीत जीत सकते हो, मन को आप वश में कर सकते हो। मन अगर वश में नहीं है तो खुशी कहां है, शांत नहीं है मन, शांत नहीं है तो खुशी कहां की खुशी है, ये तो ऐसे ही धोखा है। ये लोग इसीलिए खुश नहीं है, आज समाज में लोग खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है, क्योंकि मन शांत नहीं है, है? इसीलिए आप देखो सारे संसार में जो है आत्महत्या की दर बढ़ती चली जा रही है, अब पता है आपको लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या जानते हो आप क्या होगा, अपने आप को ही मार लेते हैं और अजीबोगरीब तरीके से, कोई लटक जाएगा ऐसे लटक जाएगा, ऊपर से कूद जाएगा अपने आप ही, हालांकि जानवर भी नहीं ये करते, जानवर में हम कहते हैं कम बुद्धि होती है, ये जानवर है ये तो पशु, पशु भी आत्महत्या नहीं करता, हमने कभी सुना पशु ने आत्महत्या किया, डिस्कवरी चैनल में दिखाया था है, जैसे कभी आपने सुना कि एक बंदर था वो रहता था अफ्रीका के जंगलों में, तो बंदरिया ने उसको डिच कर दिया, बंदरिया ने धोखा दे दिया, उसने क्या किया वो सबसे ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया अफ्रीका में जो जंगल में सबसे ऊंचे, और छलांग लगा दी, दिखाया कभी डिस्कवरी चैनल में ऐसी बात दिखाई, या एक मैडम थी उसने अल्सेशियन कुत्ता पाला हुआ था, एक दिन मैडम ने उसको इतना डांटा तो वो डिप्रेशन में चला गया, और डिप्रेशन में क्या किया उसने सेकंड फ्लोर से छलांग लगा दी नीचे फर्श, मर गया। हुआ कभी ऐसे नहीं होता, पशु भी आत्महत्या नहीं करता। तो कितना आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आत्महत्या करता है, क्यों, क्योंकि मन वश में नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन अशांत है, मन डिप्रेस है, मन बहुत भारी हो गया, बहुत भारी है मन। तो अगर ये भगवान के नामों का हम जप करते हैं और ये महामंत्र का जप करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ हमें क्या होता है कि हमारा मन वश में आ जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा मन विचलित नहीं होता, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है मन। और फिर जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमें पता लगता है हम कौन है, अभी हमें पता ही नहीं है कौन है हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, और शरीर तो है नहीं, हम शरीर तो नहीं है, अगर हम शरीर हैं तो फिर लोग रोते क्यों हैं जब मृत्यु हो जाती है, शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, शरीर कहीं जाता है क्या, कहते चला गया जी चला गया, वो चला गया तेरा चाचा चला गया, उनसे पूछो भैया कहां चला गया, चाचा जी तो यहीं लेटे हुए हैं क्यों रो रहे हो, आत्मा चली गई, वो आत्मा को देखा था क्या, उनसे पूछो वो आत्मा को देखा था आपने, आत्मा को तो देखा तो रो क्यों रहे हो,
सोचने की बात नहीं है। और जिसको देखा नहीं वो चला गया तो रो क्यों रहे? जिसको आपने देखा ही नहीं कभी तो वो चला गया तो रोगे क्या? जैसे कोई बंदा है अमेरिका में रहता है, कोई भी है, आपने कभी देखा ही नहीं उसको मर गया, आपको क्या फर्क पड़ता है? जंगल में कितने लोग, कितने पशु, कितने लोग मर जाते हैं, उससे कोई हमें क्या लेना देना? तो अगर आत्मा को देखा नहीं वो चली गई तो हमें रोने रोते क्यों हो? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं आ रही समझ में? समझ में नहीं आ रही? विडंबना है ना, ये पैराडॉक्स है ना। जब आत्मा शरीर में है तो उसको देखते नहीं हम, और ये शरीर छोड़ देती है तो रोते हैं उसी के लिए। शरीर के लिए कौन रोते हैं? शरीर तो वही रहता है, शरीर के लिए कौन रोता है? शरीर के लिए रोते हैं, शरीर के लिए थोड़ा रोते हैं, शरीर तो पड़ा है वही, उसको तो खुद उठा के लेके जाते हैं और जला आते हैं, खुद ही जला आते हैं या दफना देते हैं या कुछ भी, उसको हम नहीं चाहते। जब आत्मा लेके जाती है तो शरीर को कोई घर में भी नहीं रखना चाहता। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, डेड बॉडी, डेड बॉडी, जल्दी निकालो। और हम समझते हैं कि ये लिविंग बॉडी है, ये भी डेड बॉडी है। हम समझते हैं हम तो लिविंग है, ये डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी, ये लिविंग बॉडी, और ये भी डेड बॉडी है। नहीं, डेड बॉडी नहीं है, नहीं है, कह रहे नहीं। यही तो समझना है हमें। जैसे ये जो कपड़ा है ये हिल रहा है, ये हिल रहा है ना, ये कपड़ा मेरा देखो हिल रहा है ना, ये तो ये भी हिल रहा है। अभी चलूंगा धोती भी हिलेगी, तो धोती में जान है ना, तभी तो हिल रही है। नहीं, कपड़े में जान है तभी तो हिल रहा है ना, बताओ जान है इसमें? अरे हाँ, सच बताओ तो सही, एक बार बताओ, इसमें जान है इसलिए हिल रहा है कुर्ता? नहीं सब बातें कॉम्प्लिकेट बातें कर रहा हूं क्या? क्योंकि हाथ में जान है इसलिए कपड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं अगर कपड़े को हैंगर में टांग दूंगा तो हिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब जब ये यहां पे था तब तो इसमें जान थी, और हैंगर में टांग दिया तो डेड हो गया, यही बात है? या हमेशा ही डेड था? ये हमेशा ही डेड था, पॉइंट पकड़ लिया, हमेशा ही डेड था। इसी तरह से हमारी बॉडी हमेशा ही डेड बॉडी है, बॉडी डेड बॉडी है, ये लिविंग कभी नहीं है। लिविंग जो है आत्मा है उसके अंदर, बॉडी तो डेड है हमेशा, डेड बॉडी है, डेड बॉडी को कैरी कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये जो हमारी पहचान है इस डेड बॉडी के साथ, तो क्या होगा, कहां से सुखी रहेंगे हम? जब हम कहेंगे हम डेड बॉडी हैं तो सुख कहां से आएगा? डेड बॉडी को तो आप जला देते हो, कुछ नहीं कहती वो। तो हम क्योंकि इस डेड बॉडी को लिविंग समझे बैठे हैं, इसको समझते हैं ये मेरी बॉडी है, मैं हूं, ये मेरी बॉडी है, मैं यही हूं, इसलिए कुछ भी आपने इसको कह दिया तो कष्ट होता है। अब इसको जब कष्ट होता है इसलिए हम इसी के ऊपर सारा खर्चा करते हैं, बॉडी के ऊपर। अगर आप अपना निकालो हिसाब किताब महीने का और हिसाब लगाओ कि कितना खर्चा किया हमने बॉडी पे, तो सारा खर्चा ही बॉडी पे होता है। आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है, खर्चे की बात तो बाद में आएगी। आत्मा क्या है, उसकी क्या खुराक है, क्या जरूरतें हैं, वो तो बाद में बात आएगी ना, पता ही नहीं है आत्मा। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है भगवान के नाम। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो डायरेक्ट हम भगवान के संग कर रहे हैं, आध्यात्मिक संग कर रहे हैं। और जब हम आध्यात्मिक संग करते हैं तो ये जो हमारा इल्यूजन है, ये जो हमारा एक इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, ये भागती है और हमें पता लगता है। हम पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे अब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना कि हमारा अस्तित्व शरीर से अलग है, ये तो थ्योरेटिकली समझ गए ना, नहीं तो क्यों कहते हैं कि चला गया? और ये सारी भाषाओं में है, सारी दुनिया के लोग ऐसे बोलते हैं, जब मृत्यु हो जाती है चला गया, ही पास अवे, ही इज नो मोर, गॉन इज गॉन, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, चला गया, चला गया, नहीं रहा, चला गया, बंगाली हो, सारी भाषाएं तो मुझे आती नहीं, लेकिन आप जाके देख सकते हो सब भाषाओं में ये एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम शरीर से अलग हैं। इसलिए तो हम कहते हैं मैं, मेरी, मेरा शरीर है, ये मेरा, तो मेरा मैं कौन, कहाँ है वो, कहाँ है वो, अलग है ना, तभी तो वो कह रहा है मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा कहाँ। तो ये पॉइंट तो समझ आ रहा है ना, ये तो मुश्किल नहीं है ना। तब इसको रियलाइज करने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको भगवान के नामों का सहारा लेना होगा, नहीं तो ये अनुभव नहीं होगा, एक तरफ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रह जाएगी बस। और जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, फिर आपको शरीर के कष्ट कोई मायने नहीं होंगे, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु कोई इफेक्ट नहीं करेगा। फिर इस शरीर के लिए आप पागलों की तरह, गधे की तरह काम नहीं करोगे सुबह से शाम तक। आजकल क्या हाल है, लोग शरीर तो मनुष्य का है लेकिन काम कैसे करते हैं, गधे की तरह, सुबह से रात तक काम ही काम है। नहीं लोग ऐसे, क्या यहां पे गुड़गांव में ऐसे लोग नहीं है, नहीं है। कलयुग के प्रभाव के कारण हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से, ज्यादा शरीर को सुख देने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुख शरीर को कभी मिलते नहीं, तो डेड है, डेड बॉडी को कैसे सुख दे सकते हो। सुख मिलेगा जब हमें यह पता लगेगा कि हम आत्मा हैं, और फिर हमें पता लगेगा कि आत्मा की खुराक कैसे है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितने नुस्खे हैं हमारे पास, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, ये वाला खाओ, ये नहीं खाओ, ये कितने सारी चीजें हैं। इसी तरह से आत्मा की स्वास्थ्य के लिए अगर हम चिंतित रहेंगे तो फिर हमारे जीवन में से चिंताएं और जो सारी जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो चली जाएंगी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, सारी चीजें चली जाएंगी, गुस्सा, गुस्सा कितना आता लोग, थोड़ा सा उनकी कार को टच हो जाएगी ऐसे बताएंगे, पापनों में आ जाएंगे बाहर मारने के लिए, मेरी कार को, व्हाई डिड यू टच मी, तेरे को थोड़ा टच किया, तेरी कार को थोड़ा सा लग गया, तो समझ रहे मैं तो कार, समझ रही है बात। तो ये इस चीज को जो हम इल्यूजन में है, जो धोखे में है, इससे हम निकल आएंगे जब हम भगवान के नामों से अपना संबंध जोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम जाने हम कौन है, हम ये डेड बॉडी नहीं है, ये शरीर हमारी डेड बॉडी है, डेड बॉडी नहीं है हम लोग, हम सनातन है, हमारा अस्तित्व हमेशा है ना। जैसे अगर हम कपड़े बदल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। इसी तरह से ये शरीर जो है आत्मा का कपड़ा है, आत्मा इससे अलग है, आत्मा अलग तत्व की बनी हुई है, आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, जैसे भगवान है उसी तत्व की आत्मा बनी हुई है। और ये शरीर जो है भौतिक है, ये यहां के जो तत्व हैं उसका बना हुआ है। शरीर किस किस का बना हुआ है, कौन कौन से तत्व का, वेरी गुड वेरी गुड, भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि है ना। मुंह में थर्मामीटर डालते हो तो अग्नि आती है ना, टेम्परेचर आता है ना, अग्नि है। तो इन चीजों का बना हुआ है शरीर, यही की चीज है, ये यही है, यहीं से मिलती है, अग्नि भी, पृथ्वी भी, सब यहीं की है। लेकिन जो आत्मा है वो जो भगवान का सत्य चित्त और आनंद, ये है सच्चिदानंद विग्रह, इसके बने हुए भगवान सच्चित आनंद। सत मतलब हमेशा है? हमेशा, सत मतलब हमेशा, सनातन, शाश्वत। ये तो चीजें आती हैं और चली जाती हैं, है ना। जैसे कितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज हो, जैसे करताल है, ये हमेशा थोड़ा रहेगी, मिट जाएगी एक दिन, है ना। यहां पे तो कोई भी चीज जो है नाशवान है, कोई भी चीज है। और इसी तरह से हमारा जो शरीर है ये भी नाशवान चीजों का बना हुआ, और ये नाशवान है, लेकिन आत्मा जो है वो नाशवान चीज नहीं है, आत्मा जो है शाश्वत है, ना तो कभी इसका जन्म होता है और ना कभी ये, जब जन्म ही नहीं होता तो मरती कहां है, शाश्वत है, हमेशा है। और एक पूर्ण रूप से इसको ज्ञान है, ये अज्ञान में नहीं है, इसको थोड़ा कुछ ज्ञान है, इसको कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसे हमारा जो शरीर है ये भौतिक है, भौतिक मतलब जड़ है, जड़ प्रकृति का बना हुआ है अज्ञान का, लेकिन जो आत्मा है वो पूर्ण रूप से ज्ञान है। इसलिए चित्त सत्य चित्त और आनंद, आनंद में रहती है वो, हमेशा आनंद में रहती है, पूर्ण आनंद में रहती है, उसमें आनंद है, आनंद हमारे अंदर है, आनंद बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढते हैं आनंद, जैसे आपने सुना है उसके बारे में, कस्तूरी हिरन होता है, अभी तो मार दिए, पता नहीं है भी कि नहीं, अभी लुप्त हो गए, कई जानवर लुप्त हो गए, लेकिन कस्तूरी हिरन एक रियलिटी है, कोई काल्पनिक नहीं है। उसके यहां पे नाभि में एक खुशबू होती है और वो खुशबू इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि मीलों तक जाती है, मीलों तक, मतलब जंगल में जब हिरन एक जगह खड़ा है तो वो मीलों तक उसकी खुशबू आएगी, एक मील दूर से पता लगेगा कि हाँ भाई कस्तूरी हिरन है। और कस्तूरी हिरन क्या सोचता है कि ये जो खुशबू है वो उतनी दूर से आ रही है, वो भागता है खुशबू के पीछे, उसको ये ज्ञान नहीं है कि खुशबू तो मेरे पास है, बाहर थोड़ा है कहीं, खुशबू तो मेरे पास है, जहां मैं रहूंगा वहीं खुशबू है, क्योंकि वो दूर तक जाते हैं ना तो सोचता है वो मीलों तक है, वो भागता है खुशबू के पीछे। यही हमारा हाल है, आनंद हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इसमें आनंद है, उसमें आनंद है, इस चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे प्यासा व्यक्ति मरुस्थल में भागता है मिराज के पीछे, मिराज पता क्या होता है, मिराज क्या होता है, हाँ वेरी गुड, पानी का भास होता है, वेरी गुड, उसको हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा, मृग मतलब पशु, पशु की तृष्णा, मतलब पशु जो है उसको ज्ञान नहीं होता, बेचारा प्यासा होता है और वो पानी को देख के भागता है उसके पीछे, और जब भागता है तो प्यास उसकी बढ़ जाती है, और वहां पहुंचता तो पानी होता नहीं, पानी और आगे नजर आता है, पानी उसको हमेशा नजर आता रहता है, पानी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता लेकिन पीने को नहीं मिलता, वो बेचारे की प्यास बढ़ती जाती है और प्यासा ही वो उस मरुस्थल में प्राण त्याग देता है अपने। हम भी चाहते हैं हमारा भी यही हाल हो, नहीं चाहते ना, तो इस मृग तृष्णा के पीछे मत भागो, भौतिक सुखों के पीछे, ये भौतिक सुख ऐसे ही हैं, या आपको तृप्त करने वाले नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, इन भौतिक सुखों से आपकी आत्मा तृप्त नहीं होने वाली। जैसे मछली होती है, मछली को अगर आप तालाब से बाहर निकाल दो और उसको दुनिया भर की सुविधाएं दो, मछली देखिए मछली, उसको पानी से बाहर निकाल लो और सोने की तश्तरी में रखो, सोने की प्योर गोल्ड, और दो नौकर 24 घंटे उसके पास हैं, एक इधर चामर डुला रहा है उसको और ऐसे खड़ा है, ऑर्डर की इंतजार कर रहा है कि मछली रानी कब हमें ऑर्डर देंगी, हम तैयार हैं, और 56 भोग खाने को है, काजू पिस्ता बादाम 56 भोग हमेशा तैयार है, मछली खुश हो जाएगी ना, नहीं, मछली जल की रानी है। बचपन में ही सुनाते हैं हमारे बच्चे जो हैं, पोएम सुनाते हैं, जीवन उसका पानी है ना, इसी तरह से हमारा जीवन है आध्यात्मिक वातावरण, ये वातावरण चाहिए हमें, ये जब जहां आप बैठे हो ऐसे चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए ये, तब हम खुश होएंगे, तब हम जिएंगे, तब हम तड़पेंगे नहीं। अभी जो हमारा जीवन है ये भौतिक जीवन, तड़पन का जीवन है, जिसे हम खुशी कहते हैं, ओ बड़ा खुश हो गया, ओ बहुत मजा आ गया, ज्यादा तड़पते हैं ज्यादा मजा आ गया, पागलों की तरह, क्योंकि पता ही नहीं है हम कौन है। तो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हमें ये महसूस हो जाता है, हम रियलाइज कर जाते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और फिर आपकी एक्टिविटीज, आपका सारी एनर्जी अपनी आत्मा के लिए लगती है। फिर जो ऐसा नहीं है कि हरे कृष्णा के लोग पागल हो गए हैं, छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ दिया, अच्छा वाला डॉक्टर था, पागल हो गया, पता नहीं गंजा हो गया, कैसे घूमता रहता है, किताबें बांटता रहता है, पागल नहीं हो गया वो, तुम पागल हो, अपने आप को शरीर समझे बैठे हो। तो भगवान के नामों का जप करने से जब एक्सपीरियंस होता है तो फिर भगवान के कार्यों के लिए जो आत्मा को पूर्ण तुष्टि देते हैं वो करते हो, फिर कभी आप सुसाइड करने सोचते, कभी आप ड्रग एडिक्ट नहीं बनते, आप फिर गंदे गंदे कार्यों में नहीं लगते आप, नहीं तो फिर अगर ये आनंद नहीं मिलेगा तो आत्मा तो आनंद चाहती है, किसी को हायर आनंद नहीं मिलेगा तो लोअर आनंद के पीछे भागेगा। बाबा जी क्या नाम, आपका क्या नाम है? 70 साल जी के, आप आगे आइए मेरे पास आइए प्लीज, आपको कह रहा हूं आगे आइए, आपको पास देखना चाहता हूं मैं, हाँ इसीलिए तो आपको पास आइए, अब आप छोड़ो बच्चों का मुंह, इधर आइए, तभी तो आपको बुला रहा हूं अपने पास, अब बच्चे बच्चे इधर आओ मेरे पास, जरा उठ के आओ, थोड़ा सा कष्ट करो, आगे आ जाओ, शाबाश आगे आ जाओ, शाबाश शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद, इधर आओ मेरे पास, आपको तो सुनाने आया हूं इतनी दूर से, ले आओ वो ले आओ, इनका वो भी ले आओ कुशल, आगे आगे ले आओ, शाबाश शाबाश, थैंक यू वेरी मच, बैठिए। एक व्यक्ति था, उम्र हो गई थी उसकी, नारद मुनि जी आ गए उसके पास, नारद मुनि जानते हैं, नारद मुनि जी घूमते रहते हैं सब जगह, कहीं भी जा सकते हैं, वैकुंठ लोग जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये उनमें उनको ये योग्यता प्राप्त है, तो नारद मुनि जी आ गए, वो पहचान गए, नारद मुनि जी को पहचान गए, उनको बैठाया, उनका सत्कार किया, उनको खिलाया पिलाया, बहुत खुश हो गए नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, वैकुंठ लोग आप भी चलो, वो तो खुश हो गए, कहते हैं मैंने तो कोई तपस्या नहीं की, अभी अभी जाना शुरू किया था हरे कृष्ण मंदिर, इतनी जल्दी मेरी लाठी लग गई, हाँ चलो चलो लेने आए हो चलो। जाने को तैयार हो गए, अब घर के जब दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो ठिठक गए, नारद मुनि का क्या हो गया, कहते हैं क्या कहूं, अभी एक बेटी कवारी है, बाकी तो सारी जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, सारी जिम्मेवारियां पूरी है, बेटी कवारी है, बेटी की जिम्मेवारी तो पूरी कर लूं। अब नारद मुनि जी क्या कहते, जबरदस्ती थोड़ा किसी को भगवान के धाम ले जा सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप भगवान के धाम जाने के लिए, बेचारे चले जाते हैं, फिर घूमते फिरते थोड़े सालों बाद आते हैं उसी घर में, तो देखते हैं वो बुजुर्ग जो था उसकी बेटी की भी शादी हो गई है अब, और घर में पोते पोतियां खेल रहे हैं, जैसे ये है हमारे पोते पोतियां खेल रहे हैं, तो नारद मुनि जी कहते हैं अब तो चलो, तो सारी जिम्मेवारियां पूरी हो गई, बच्चों की शादियां हो गई, पोते पोतियां हो गई, अब क्या करना है यहां पे, कहते हैं नारद मुनि जी क्या कहूं, ये जो आजकल की बहुएं हैं ना बच्चों का ध्यान नहीं रखती, इनको या तो जाना है किटी पार्टी ना, या इनको मॉल जाना है या पार्लर जाना है, इन्हीं की लिस्ट खत्म नहीं होती, बच्चे बेचारे क्या करूं मुझे संभालना पड़ता है, छोटे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए अपने, मेरे अंश है मेरे वंशज है, बेचारे नारद मुनि जी चले जाते क्या करें, जबरदस्ती नहीं कर सकते प्रभु जी, जब दोबारा आते हैं थोड़े सालों में घूमते फिरते देखते हैं कि सामने फोटो लगी हुई है उसी की, हार पड़ा हुआ है फोटो लगी हुई है, नारद मुनि समझ जाते हैं गया ये तो बंदा चला गया चला गया, इसका फोटो लगा देते हैं ना घर में, फोटो लगी होती है उसकी, हार डाल देते हैं, नारद मुनि जी तो त्रिकालदर्शी है सब जगह जानते हैं, और तो सर्वज्ञ कौन कहां गया सब पता है, तो नारद मुनि जी कहते देखे तो सही आत्मा कहां गई, जीवात्मा कहां गई है, कौन से लोक में गई है, ऊपर दृष्टि डालते हैं ब्रह्म लोक महर लोक स्वर्ग लोक, कहीं नहीं है, नीचे दृष्टि डालते हैं पाताल सुतल अतल सब, वो तो कहीं नहीं है, कहते कहां चली गई है आत्मा, उनकी दृष्टि वही घर में पड़ती है, वो कहीं नहीं गई वही पड़ी है, सिर्फ शरीर बदल गया है, बैल बन गई है, अब उसी घर में है बैल बन के खड़ी है, नारद मुनि जाके बैल की भाषा में बोलते हैं अभी तो बैल बन गए हो मनुष्य से, अब तो चलो भगवान के धाम, अब क्या कर रहे हो बैल के रूप में, अब भगवान के धाम चलो, क्या कहता है बैल, बैल क्या कहता है, बैल कहता है नारद मुनि जी क्या करूं, बड़ी मुश्किल हो गई है, और दूसरा बैल तो मर गया है, एक तरफ तो मेरा बेटा जुटता है, एक तरफ मैं जुटता हूं, दो रोटियां मिलती हैं घर, ये मैं भूखे मार दूं और मुझे भी ले जाओगे, घर वाले भूखे मर जाएंगे। क्या करें, जबरदस्ती करोगे? नहीं कर सकते। भगवान के नाम आपको डंडा मार के भी ले जा सकते इसी को, नहीं तो भगवान के हाथ में तो बहुत बड़ा डंडा है, सबको डंडे मार के ले आए अपने घर, नहीं, भगवान के धाम आपको अपनी इच्छा से जाना पड़ेगा। फिर थोड़े दिनों बाद आते हैं नारद मुनि जी घूमते फिरते, तो बैल भी नहीं है, अब इधर उधर नहीं देखते, कहते इसी घर में है, कहीं नहीं जाने वाला, वो कुत्ता बन के खड़ा रहा, भौ 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 भौ। नारद मुनि जी कहते हैं बेटा तुझे अगर मनुष्य योनि में कुत्ता कहता है तो मुझे तो कहता गालियां निकाल रहा है और मारने को तोड़ता है, गाली निकालता है मुझे तो, इतना बड़ा मुनि हो के गाली निकालता है, अभी तो कुत्ते ही बन गए, वो कुत्ते ही बोलना पड़ेगा, हे कुत्ते अब तो भगवान के धाम चलो, चलो भगवान के धाम। तो कुत्ता क्या कहता है, चलूंगा? कहता है नारद मुनि जी आपको पता है अभी अभी तो घर में कुछ खुशहाली आई है, कुछ संपत्ति आई है, समृद्धि आई है, और इन लोगों का पता है क्या हाल है, दरवाजे खुले छोड़ जाते हैं। मैं किसी को अंदर आने नहीं देता, भौ 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 करके भगाता रहता हूं, चोर उचक्कों को आने नहीं देता। नारद मुनि फिर चले जाते लेकिन पीछा नहीं छोड़ते उसका। नारद मुनि ने भी कहा था इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि भगवान से उनकी एक शर्त लगी थी। भगवान के पास जब गए थे तो भगवान को उन्होंने कहा, भगवान जी आपका इतना अच्छा यहां पे वातावरण है, वैकुंठ लोक में इतनी जगह है, कोई कमी नहीं है, सुंदर सुंदर बाग, इतना सुंदर पानी हवा, कितने भी लोग आ जाए यहां पे कमी नहीं है, और आप अपने जीवों को अपने ही अंशों को वहां पे कबूतर खाने में लोग रह रहे हैं, इतने बड़े फ्लैट बना के कोई 50वीं मंजिल पे रह रहे हैं, छोटे छोटे रह रहे हैं, और मनुष्य हो गए पशु हो गए, तो आपको दया नहीं आती क्या, आपको उनके परम पिता हो, दया नहीं आती अपने जीवों पे? नारद मुनि ने बहस की थी भगवान के साथ, तो भगवान ने कहा वो आना ही नहीं चाहते। नारद मुनि क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी, तभी तो प्रभुपाद जी को भेजा मैंने, मैंने प्रभुपाद जी को भेजा, जाओ मैंने बच्चों को लेके आओ वापस, बहुत दुखी हूं नारद मुनि, भगवत गीता जी सारे ग्रंथ दिए। नारद मुनि कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं लेके आता हूं, आपके धाम कौन नहीं आना चाहेगा, मैं लेके आता हूं। अच्छा कोई दूसरी योनि का ले आओ, मान लो कोई दूसरी योनि का हो, मनुष्य योनि का ना हो, वो आना चाहे ले आओ। भगवान कहते हैं किसी भी योनि का ले आओ, कोई आना तो चाहे, ये शर्त लगी थी। तो उन्होंने कहा इसको तो लेके जाऊंगा, एक को तो लेके जाऊंगा, शर्त के कारण ना उसके पीछे पड़ गए थे वो। तो जब वो दोबारा आते हैं तो कुत्ता भी गया, कुत्ते भी उम्र इतनी होती है, 10-12-15 चला जाता, ऐसे ही घूमते घूमते नारद मुनि जी आते हैं। जब दोबारा आते हैं उस घर में तो देखते हैं कि कहीं नजर ही नहीं आ रही है वो आत्मा, किसी कमरे में है ही नहीं। वो कहते हैं ये क्या हुआ, इस घर को छोड़कर तो जाने वाली नहीं है ये, इस घर से तो पूरी तरह से बची हुई है ये, इस घर को छोड़ के जाने वाली नहीं है ये आत्मा। तो वो घर में तहकीकात करते हैं, बेडरूम में बहुत, उस वक्त बहुत बड़ा घर बन गया होता है उनका, तरक्की करके होते हैं वो जी, कितना जमाना निकल गया होता है, जमाने का उनका होते हैं वो, पुराने रईस होते हैं। इस कमरे में जाते हैं, उस कमरे में जाते हैं, इस कमरे में जाते हैं, कहीं भी नहीं जाता, करते 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 किचन में चले जाते हैं, किचन में जाते हैं, सिंक में नजर मारते हैं, वो सिंक में पड़ी है कॉकरोच के रूप में, कीड़ा बन के पड़ी है वहां से। नारद मुनि जी ऐसे सिर पीट लेते, वो कहते क्या हाल कर लिया तुमने, मनुष्य योनि से कीड़े की योनि में आ गए, अब तो चलो भगवान के धाम, कब से तुम्हें मैं कब से पीछे पड़ा हुआ हूं तुम्हारे, अब और कितना नीचे गिरना है तुमने। कॉकरोच क्या बोलता है पता है आप, चल पड़ता है भगवान के उनके साथ, कहते हैं नारद मुनि जी आपको ठहरे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, गृहस्थी क्या होता है आपको पता ही नहीं है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है आपने शादी की होती तो पता लगता है ना, ब्रह्मचारी बन के क्या पता लगेगा गृहस्थ की क्या होती है जिम्मेवारियां, आपको पता है ये क्या करते हैं घर वाले, कभी देसी घी, कभी पिस्ता, कभी बादाम, कभी किशमिश यहां फेंकते हैं। मैं किसी को वेस्ट नहीं होने देता, यहां पड़ा पड़ा सब कुछ संभालता रहता है। तो ये आसक्ति जो है बहुत गहरी है, लेकिन ये आसक्ति भी हमारी टूट सकती है अगर हम भगवान के नामों के प्रति आसक्त हो जाए। अगर हमारी आसक्ति भगवान के नामों में हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सततार पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशि तव कृपा भगवन। क्या है उसको आता है पूरा? अनुराग आ, मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया भगवान, मैं इतना इतना कुछ आपने इसमें नाम में डाल दिया है, इस नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है आपने, सारी अपनी शक्तियां डाल दी है, और ये भी कोई नियम नहीं दिया, कोई काल नहीं, कभी भी आप जप कर सकते हो, कोई इसके साथ नियम भी नहीं है, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरी इसके प्रति आसक्ति नहीं हो पाई। आसक्ति कहां है इस संसार में जिसमें कुछ नहीं है, जो छूटने ही वाला है, ये थोड़ा साथ जाता है। आपके परदादा जी का क्या नाम था? आप भी एक दिन परदादा बन जाओगे किसी के, थोड़े से सालों की बात है, हम सब परदादा बनेंगे किसी के, पर नाना परदादा, और हमारी फोटो भी नहीं होगी फिर उस घर में जिस घर के लिए हम इतना कह रहे हैं। वो फोटो परदादा की फोटो है घर में, किसी के घर में लटकी हुई है परदादा की फोटो? दादा की भी नहीं लटकाते, बस पिताजी की लटकाते हैं, हार डाल दिया थोड़े दिन वो भी गए। जैसे उदाहरण देते हैं, जब शादी होती है बेटी की तो जो उसका पति होता है उसको बोलते हैं दामाद। दामाद दामाद मतलब जब दामाद घर में आ गए तो जैसे भगवान घर में आ गए, कहते हैं ना तू दामाद है क्या यहाँ का, बोलते हैं ना। और दामाद मतलब राजा। अब जब माता पिता नहीं रहते तो फिर कौन होते हैं? फिर उसके साला और बाकी लोग होते हैं, माता पिता चले गए तो फिर क्या रिलेशन होता है? जी जा मतलब रेलना देना, जी जा समझ गया, जी जा। और जब वो भी नहीं रहते तो फिर आपके जो भतीजा भतीजी होते हैं, अब जाते हो भतीजा भतीजी मिलते हैं, वो क्या करते हैं? फूफा फूफा, रिश्ते समझ रहे हो आप? समझ आ रहे हैं रिश्ते? ऐसे फूफा हो जाएंगे हम सब, फूफा बस, फोटो भी नहीं कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने परदादा का नाम पूछा, परदादा से पहले भी तो लोग थे, उनके नाम किसी को भी नहीं पता, कौन नाम याद रखता है? तो ऐसे तो हम भी हो जाएंगे आज से सोच 200 साल बाद, तो क्यों इतनी मुसीबतों में पड़े हुए हैं, क्यों पागलों की तरह वहां पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जो है ही नहीं हमारी। ये सब बातें हम रियलाइज करेंगे, सब बातें हमें महसूस होंगी जब हम भगवान के नामों की शरण लेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा लाभ है ये, हमें पहचानेंगे अपने आप। और सबसे अल्टीमेट लाभ क्या है? अल्टीमेट लाभ ये है कि भगवान का प्रेम मिलेगा हमें इससे, पता है? भगवान का प्रेम जो है इतनी विरली चीज है कि ये किसी को प्राप्ति नहीं होती। भगवान सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, प्रेम भक्ति नहीं देते किसी को, लेकिन उस व्यक्ति को मिल जाती है जो भगवान के नामों के प्रति आसक्त हो जाता है और भगवान के नामों का सहारा ले लेता है कलयुग में। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कले दोष निदे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य क्या मुक्त संग परम रजे। कि हे राजा इस कलयुग में तो दोष ही दोष है, कलेर दोष निधि, दोषों के तो समुद्र है यहां पे, दोष ही दोष है, जिधर देखो दोष ही दोष है। अस्ति एको महान, लेकिन इसमें एक महान गुण है बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। क्या? हाँ, बड़ा गुण गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से, कृष्ण के नामों का कीर्तन करके आप भगवान के नाम जा सकते हो। बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है भगवान के धाम जाना। वो देखो वहां देखना कहां कितना दूर है भगवान का धाम, देखना जरा, बताया हुआ है कहां हम हैं और कहां भगवान का धाम है, वो लोग देखना जरा जाके। करोड़ों 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 भी नहीं, अरबों 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 वर्षों के बाद भी नहीं हम जा सकते, कितनी भी हम प्रयास कर लें। तो भगवान के नामों का आश्रय लेना ही कलयुग में, यही हमारा, यही एक आसरा है, और कोई आसरा है ही नहीं। जैसे इन्होंने भी बोला ना, कलयुग केवल नाम आधारा है ना, नानक नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। नानक कह गए हैं कि कलयुग में सब दुखी दुखी हैं, सारा संसार दुखी है, कुछ ना कुछ दुख लगा हुआ है। सुखी वही है जिसने नाम को आधार बनाया है, जो नाम की शरण लिया है। और जो हमने पढ़ा है, रूप गोस्वामी हमें 64 अंग बताते हैं भक्ति के, 64 अंग भक्ति के 64 अंग बताएंगे, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं पांच अंग हैं भक्ति के, सबसे महत्वपूर्ण अंग पांच हैं 64 अंग। किसको पता है वो कौन से हैं? पांच अंग भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण, वेरी गुड, मथुराबाद, वेरी गुड, भागवत श्रवण, वेरी गुड, साधु सांग, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड है, यही जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वही भूल गए, यही हरे कृष्ण महामंत्र का जप, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये पांच जो है बहुत पावरफुल अंग है भक्ति के है? धाम वास, उन्होंने बोला धाम में वास करना चाहिए। तो धाम में वास करने का मतलब यह भी है कि अपने घर को धाम बनाओ। अपने घर को कैसे धाम बना सकते हो आप? हैं? हाँ, भगवान की श्री विग्रह अपने घर में स्थापित करो, उनको केंद्र में रखो, उनके लिए भोजन बनाओ, उनकी आरती करो, वो केंद्र में बन जाओ, हो जाएंगे तो आपका घर जो है वो धाम हो गया। धाम बात कर रहे हो आप, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, मथुरा इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका घर ही धाम है। घर में भगवान है तो धाम है, जहां भगवान है वहां धाम है। तो अगर आपके घर में गोनिताई हैं और गोनिताई की आप रोज पूजा करते हो, नहलाते हो, उनकी आरती करते हो, उनको भोग लगाते हो, तो धाम है आपका, धाम वास। फिर भागवत श्रवण, भागवत पढ़ना है, भगवद गीता भागवत पढ़ना है, और फिर साधु संघ। घर में तो साधु संघ है ही, जो सारे लोग हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, दस लोग हैं, सारे मिलके बैठे और भजन करें, कीर्तन करें, साधु संघ हो गया। इकट्ठे बैठ के हम साधु संघ कर रहे हैं, इकट्ठे बैठ के जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो साधु संघ बोलते हैं। तो सारे घर के मेंबर मिलके जब बैठेंगे तो साधु संघ हो गया। क्या लगता है? क्या चीज रहेगी? विग्रह पूजन आ गया, नाम धाम बात आ गया, और भगवान के नामों का जप करना है, तो आपका घर ही धाम हो गया। फिर कहां से मुसीबत कहां से आएगी, कहां से कष्ट आएंगे, है ना? देखो केदारनाथ में कितना बड़ा भूचाल आया था, सारे बड़े बड़े होटल सब कुछ नष्ट हो गया, केदारनाथ को कुछ नहीं हो, तो धाम में कुछ नहीं होता। आपका घर भगवान का अगर धाम है, आपका घर कुछ नहीं होगा, आसपास कुछ भी होता रहे आपको कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग भगवान के नामों का आश्रय लें, भगवान के नामों का जप करें। जो नहीं करते वो आज से ही शुरू करें, बहुत सिंपल है। ऐसे भी कोई लोग हैं जिनको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं आता है? आता है ना सबको? लिखा भी हुआ है सामने, लिखा हुआ, वो लिखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बोलना है, इसी को रिपीट करना है। बैठे तो बैठ जाएंगे वो, आपने उनको बुलाया है, आपने उनको बुलाया है तो भगवान भी देख रहे हैं। भगवान हमें समझना चाहिए कि भगवान कंट्रोलर है, वो सब देख रहे हैं, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है। हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस? यही है कि हम अभी कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, अभी हम बॉडी कॉन्शियस है। मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का है घेरा, अधर्म में लटक रहा है। ये माया का घेरा है, मैं और मेरा, तू और तेरा। मैं और मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये है रियलिटी, ये सच बात है। नहीं तो अगर हमारा ही है सब कुछ तो फिर क्यों हमारे सामने क्यों चला जाता है? हमारे अगर हमारा सब कुछ है तो फिर चला क्यों जाता है? अगर हमारी जवानी हमारी थी तो कहाँ चली गई फिर? वो हम चाहते थे बूढ़े हो जाएं, हम कोई चाहता है बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा आ जाता अपने आप बूढ़ा। कोई चाहता है मेरे बाल धीरे धीरे सफेद होने शुरू हो जाए, वो कालक भी मिलना शुरू कर देता है ऊपर। कई लोग ऐसे बाल सफेद होने शुरू होते हैं, कालक मिलना शुरू कर देते हैं कि हम जवान हो जाएंगे। कालक मलने थोड़ा जवान हो जाओगे आप, वो प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, मुंह पे ऐसे कर लेते हैं, जवान हो गया। अरे जवान हो जाओगे क्या? दांत नए लगा लेते हैं। वो बुढ़ापे को ऐसे थोड़ा रोक सकते हो? आप तो बूढ़े हो ही नहीं, इस चीज को समझो। अब तो आत्मा हो, इस चीज को समझो, इस चीज को रियलाइज करो। तो जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु तो है ही नहीं आपके लिए, तो शरीर का है। जैसे कपड़े हैं, मैं कोई कपड़ा थोड़ा हूं, मैं तो कपड़ों से अलग हूं। कपड़े तो मैं कितने भी बना लूं। इस तरह से हमने कई शरीर बदले हैं, भूल गए हैं बस। तो हमारे जो शास्त्र हैं, जो गुरु हैं, साधु हैं, हमें वो याद दिलाते हैं जो हम भूल गए हैं। तो अभी हमें 7 बजे पूरे खत्म कर देना है लेक्चर, क्योंकि भगवान के दर्शन खुलेंगे, संध्या आरती होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ प्रश्न करिए, कुछ चर्चा करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपने कुछ सुना, समझा, सोचा, या कुछ अपनी कोई कमेंट किसी का नहीं। शाबाश। हमारे को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। हमारा और भगवान का जो संबंध है, प्रेम का संबंध है, वो प्रेम के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते मुझसे प्रेम कर, किसी को डंडा मार के कह सकते हो मुझे प्रेम कर, प्रेम नहीं करेगा तो बताता हूं तुझे, और ना ही आपको आनंद आएगा। आपको उदाहरण देता हूं छोटा सा, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो आप घर में हो अकेले, आप घर में अकेले हो और आप बोर हो रहे हो, क्या करे यार, टेलीविजन देखने का मन नहीं कर रहा, कोई बेकार की चीजें आती, काम करने का मन नहीं, क्या करो, कोई हो ना। वो देखते हो घर में नौकर है, रामू, रामू नाम रखते, नौकरों का नाम रामू रखते, और बच्चों का नाम रखते बॉबी है, और इस तरह के टोमी, टोमी नाम रखते हैं नौकर का नाम, रामू, शामू, ये कलयुग है। तो रामू घर में है, उसको कहते हैं इधर आ। ऐसा है, कार्ड्स खेलते हैं आपस में, ताश खेलते हैं, चलते हैं। वो नौकर है मालिक, चलो खेलते हैं, नौकर का या सारा समय मालिक का, या मालिक जो भी करवाए। तो जब आप सुनो ये उनकी मम्मी को दे दो ना, ये कहां है मम्मी इसकी, तो फिर चक्रों में पड़े हो आप भी। आपने तो अपने बेटे को पाल दिया ना, बेटा या बेटी जो भी है, अब उनका उन्होंने पैदा किया, उनका पालना का फर्ज है, हमारा फर्ज थोड़ा है। जहां हमारा फर्ज है कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये तो समझो, बात बहुत बड़ी है ये। इनको भी नुकसान हो रहा है बेचारों, उनको उनको जवान आदमी चाहिए पालने के लिए, बूढ़ा आदमी क्या पालेगा। भगवान ने जो नेचर बनाई है हिसाब से बनाई है ना, तो बूढ़े आदमी के भी बच्चे पैदा कर देते, ये समझ में आ रही बात है नहीं आ रही। बच्चे को जवान औरत चाहिए, स्ट्रांग चाहिए उसका देखभाल करने के लिए, वीक व्यक्ति नहीं चाहिए उसको। हम सोचते हमने बड़ा बहुत बड़ा काम कर दिया, हम तो नौकरी कर रहे हैं और हमारे माँ बाप बच्चे पाल रहे हैं, और जो वो बड़े होंगे आपको वृद्धाश्रम में भेजेंगे, वो कभी भी नहीं रखेंगे घर में, गारंटी से लिख के ले लो। आपने जब उनका ध्यान नहीं रखा, जब आपने ध्यान रखना था वो तो ध्यान रखेंगे। और जी देखो क्या जमाना आ गया, वृद्धाश्रम में डाल दिया। आपने क्या किया था जब आप तो नौकरी कर रहे थे। नहीं समझ में आ रही ना बातें, लेकिन ये सच्ची है, कड़वी है, सच्ची है। तो क्या कथा सुना रहा था याद है, भूल गए, कोई कथा सुना रहा था मैं आपको। वेरी गुड, ये बड़े इंटेलिजेंट है, इसने ही प्रश्न पूछा, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जय अमित। वेरी गुड, थैंक यू। तो कार्ड खेलने के लिए वो उनको पत्ते बांटता है। अब जब उसने पत्ते बांट दिए, जब उसने पत्ते बांट दिए तो अब वो उसको कहे, देख भाई रामू अब सत्ती पान की फेंक देना। अब अगर वो नौकर और मालिक का रिलेशन रखेगा तो उसको मजा ही नहीं आएगा कार्ड्स खेलने का, मजा आएगा उसको? उसको तो स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, तभी तो उसको खेलने का मजा आएगा ना, नहीं? हालांकि उसका नौकर है तो स्वतंत्रता उसको देनी पड़ती है, वो खेलता है। लेकिन अब अगर वो नौकर सोचे कि देखो मालिक तुम्हारे साथ कार्ड्स खेलते हैं, इन्होंने कहा जो मर्जी पत्ता फेंकूं, और दूसरे दिन जाके वो फ्रिज खोल ले उसमें से, और वो फ्रिज खोल के और जो भी पड़ा हुआ मालिक का खा ले, और कार की चाबी ले और कार उठा के भाग जाए कहीं भी, मालिक बड़ा खुश होगा ना, है निकाल देगा नौकरी से। ऐसी हमने किया, अब भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है आपस में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, हम तो कहा भगवान बन गए। भगवान ने कहा जाओ नीचे जाओ भरो भगवान, ये भगवान तो बनने आए हैं यहाँ पे, हम ये भगवान को बन रहे हैं हम यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं? तभी तो सरेंडर नहीं करते भगवान को, हम भगवान हैं, हम भगवान को क्या, जो हम भगवान है तो दूसरा भगवान कहां से आ गया, वो हमको भी भगवान है। नहीं समझ में आ रही बातें, यही तो हमारी बीमारी है, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो इसीलिए ये हमारी जो अंदर जो स्वतंत्रता है इसका वो हमें मिसयूज नहीं करना, ये मिसयूज कर बैठे हम, कि हमने समझा कि हम सब कुछ हमारा है, अब हम कुछ भी करेंगे, गोपियां भी हमारी हैं, अब हम गोपियों के साथ रास भी करेंगे, आप जाओ जाओ नीचे जाओ करो रास करो पास करो, और बीमारियां लो, एड्स की बीमारियां भी लो, मजे लो एड्स के, करो करो नकल करो मेरी लो मजे लो, यहां फेंक दिया। बनो भगवान, भगवान बनना चाहते हो बनो, वो तुम्हें स्वतंत्रता दी थी प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, ना कि मिसयूज करने के लिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का प्रश्न? अभी तो 8 मिनट है, आ जाओ भाव इसका, कई लोग तो आए 8 मिनट के लिए हैं, अब उनको क्या कहेंगे, चलो 8 मिनट का उनको फायदा हो गया, बेटर लेट देन नेवर। वो तो आई इसी टाइम पे है जी, कोई कुछ करना ही ना पड़े, बस हाजिरी लगा देंगे हम। और अगर पिक्चर में जाना होना तो कभी लेट नहीं पहुंचेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे। वो जी सीन निकल गया तो समझ नहीं आएगी जी पिक्चर, आध्यात्मिक सीन निकल जाए लाइफ निकल गई है, निकल जाए इसी में चल रहा। हाँ जी प्रभु जी बोलना चाहते हैं कुछ? अच्छा अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न? अभी 7 मिनट बचे हैं। माताओं की तरफ से या गुड़गांव में माताओं को अलाउड नहीं है प्रश्न पूछना? अलाउड है ना? आप पूछो ना, फिर अलाउड है तो फिर क्यों आप शर्मा रहे हो? नहीं, सब समझ आ गया आप लोगों को, हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी गुड। सोलह वाला ही जो करते हैं, है ना? आप रोज सोलह वाला करते हो? दो से? गुड, थैंक यू। तो सोलह वाला का ये है, प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी आचार्य हैं, आचार्य मतलब जैसे डॉक्टर होता है शरीर का, शरीर का डॉक्टर होता है वो, आप उसके पास जाते हो, हैं, खुद बीमार हो गए, बच्चा बीमार हो गया, तो वो कहता है देखो ये ना मैं एंटीबायोटिक दे रहा हूं, 250 मिलीग्राम चार बार लेना है। तो हम उससे तो पूछते नहीं कि डॉक्टर साहब 250 मिलीग्राम क्यों, 150 मिलीग्राम क्यों नहीं दिया, या 500 क्यों नहीं दिया, पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर कहेगा देखो हमने रिसर्च की है कि इतना अगर आप डोज लोगे ना तीन बार, तो आपके अंदर जो बीमारी है ना वो चली जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएंगे, हमें पता है, और अगर ज्यादा देंगे तो आप ही मर जाओगे, इसलिए ज्यादा नहीं दे सकते। तो इसी तरह से आचार्यों ने सोच समझ के ये डोज दी है कि 16 माला करोगे तो सब कुछ चलेगा, आप सेवा भी कर पाओगे, अपने आप को बचा भी पाओगे, सब कुछ चलेगा। ये तो खुद प्रभुपाद जी हमारे आचार्य 64 माला किया करते थे, 64 माला, लेकिन उन्होंने देखा मेरे शिष्य 64 माला नहीं कर पाएंगे ना। जैसे बच्चा होता है, अब उसको पूरा इंजेक्शन नहीं, इतना बड़ा इंजेक्शन नहीं दे सकते, बीमारी होगी तो आज ही ठीक करना, चलो पूरा इंजेक्शन दे दे, नहीं ऐसे थोड़ा होता। इस तरह से आचार्य हैं, डॉक्टर हैं, आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, जानते हैं, तो उन्होंने देखा कि आज कल युग में जो वातावरण है वो 16 माला करने से आप बच जाओगे। एक तरह से प्रभुपाद जी की कृपा भी है, प्रभुपाद जी ने अपने आधार पे, अपने बल पे इसको कम कर दिया, क्योंकि वो भगवान के इतने नजदीक हैं कि 16 माला के आधार पर भी वो आपको भगवान के धाम लेके जा सकते हैं, ये वही कर सकते हैं। अदरवाइज चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये शुरू किया आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन शुरू किया, जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को ना? चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं तो उसी व्यक्ति के हाथ से खाता हूं जो लखपति है। लखपति मतलब, लखपति का क्या मतलब? जो 64 माला करता है रोज, पैसे के हिसाब से नहीं, जो 64 माला करता है वो लाख बार भगवान का नाम ले लेता है, एक लाख बार। तो प्रो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर आप 64 माला नहीं करते तो फायदा क्या होता? लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भगवान के इतने नजदीक हैं, उन्होंने अपने दम पे कहा नहीं, जो 16 माला भी करेगा उसको भी मैं ले जाऊंगा भगवान के धाम। तो बहुत बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर, तो इसीलिए धीरे धीरे आप 16 नंबर पे आइए, 2 से 4, 4 से 8, और देखिए कैसे भगवान आपके जीवन को अपने हाथ में ले लेंगे, जैसे अर्जुन के रथ को अपने हाथ में ले लिया। सच्ची बात बता रहा हूं आप। थैंक यू। तो अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान महोदय आ चुके हैं, इसका मतलब है कि अब विराम दिया जाए। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि समय तो, हाँ बोलिए माता जी, आपका प्रश्न है माता जी? किसी का प्रश्न इधर कोई? ओके, तो आप सब लोगों को यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान के नामों का आश्रय लीजिए, और ये साथ जाएगा, ये साथ भी जाएगा आपके, और इस संसार में भी आपको सब कुछ देगा, ये सब कुछ, वो कोई कमी नहीं आने वाली। ये एक तरह से समझ लो आपने भगवान की नौकरी ले ली, तो भगवान तो आपको कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो आप होटल में जाते हो, 5-स्टार होटल में जाते हो, तो बहरा होता है ना, बाहर खड़ा होता है, ऐसा सलाम मारता है, और एक मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका से आया है, अमीर आदमी अमेरिका का आया, और उसने देखा लंबा चौड़ो आंखों मूंछों वाला आदमी है, सलाम मारता है, बड़ा खुश हो जाता है, जेब से निकालता है, $100 दे देता है उसको, उसके लिए क्या है, भट्ठी लेके आया $100, एक दे देता है $100, उसके लिए कितनी $100 तो बहुत चीज होगी उसके लिए सलाम मारने के। तो यहां का व्यक्ति अगर एक सलाम मारने के $100 दे सकता है तो भगवान के आपको करोड़ों अरब रुपया नहीं दे सकते, सिर्फ आपने दंडवत किया उसके ऊपर अगर खुश हो जाए तो खुश हो। हर एक कोई तो नहीं देता, हर एक कोई तो $100 नहीं देगा, तो चला ही जाता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? समझ में नहीं आती ये बातें? समझ में आने के बाद हम करें, समझ में हम ऐसे ऐसे कर देते हैं लेकिन करते वही करना वही करने में हम नहीं। हमारे शास्त्रों में लिखा है समझ आने का मतलब है कि आप करोगे वो बात तब समझ में आई, तो समझ में नहीं आई। जैसे किसी को कभी सिगरेट मत पिया जाए, वो सिगरेट मत पिया, हाँ नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट ना पीने के वो पूरा भाषण दे देगा सिगरेट पीते हुए। सिगरेट पीते हुए क्या बोलेगा? सिगरेट का ये नुकसान है, वो नुकसान है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी, वो पिएगा नहीं। ऐसे लोग देखे आपने? मैंने तो बहुत देखे हैं संसार, ऐसे आप मत बनो। समझने का मतलब है करना है। अगर हमें समझ आ गई हरे कृष्ण महामंत्र इतना महत्वपूर्ण है तो आज से शुरू कर दो और बढ़ा दो, ये है समझने का मतलब। ठीक है, ओके। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही ध्यान से आपने सुना और भगवान का पूरा आपको आशीर्वाद। हरे कृष्णा।
और उस समय प्रैक्टिस किया,
10 साल 10 साल प्रैक्टिस किया,
10 साल प्रैक्टिस किए और 10 साल